आप सुन रहे हैं सुनो किताब।
हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? तो मेरा नाम है गिनी। आज हम पढ़ेंगे पार्ट नंबर 9, पानी रे अजब तेरी कहानी। तो सभी बच्चे अपनी अपनी किताब में पार्ट नंबर 9, पानी रे तेरी अजब कहानी निकालेंगे। सभी ने निकाला पार्ट नंबर 9, जिसका शीर्षक है पानी रे अजब तेरी कहानी। तो पढ़ना शुरू करें। एक दिन निकिता ने अपने साथियों को अपना सपना सुनाया। निकिता एक लड़की का नाम है। एक दिन उसने अपने सारे दोस्तों को अपना सपना सुनाया। निकिता ने कहा, कल रात सपने में मुझे लाल, पीला, नीला व हरा बहुत सारे रंग का पानी दिखा। निकिता ने क्या बोला कि कल उसे सपने में क्या दिखा? लाल, पीला, नीला व हरा बहुत सारे रंग का पानी दिखा। कोई खट्टा था, कोई मीठा था। पानी ने मुझसे भी बातें की। निकिता ने क्या बोला कि पानी ने क्या की? उससे बातें की। उसको कितने सारे रंग का पानी दिखा था? कोई खट्टा था, कोई मीठा था। आगे है पानी का रंग। बच्चे चर्चा करने लगे कि पानी हरा, पीला, नीला कैसे हो गया? चलो देखें पानी का रंग कैसा होता है। चलो अब हम ये पता करेंगे इस पार्ट में कि पानी का रंग कैसा होता है। यह भी कीजिए, पानी से भरी 3 कटोरियां लीजिए। पानी से भरी हुई 3 कटोरी लीजिए, बाउल्स लीजिए। एक में हल्दी पाउडर, एक में लाल स्याही और एक में नीली स्याही थोड़ी थोड़ी डालिए। आपने 3 कटोरियां ली, घर जाकर ये एक्टिविटी करना आप लोग, ठीक है? एक में थोड़ा हल्दी पाउडर डालें, दूसरे में लाल रंग की स्याही डालें, तीसरे में नीले रंग की स्याही डालें। यह सामग्री न हो तो कोई भी रंग डालिए और देखिए कि पानी का रंग कैसा हो गया। कोई भी 2 रंग के पानी को अब थोड़ा थोड़ा लेकर एक दूसरी कटोरी में मिलाइए। बन गया एक और नया रंग। देखो घर जाकर क्या करना, 3 कटोरी लेना, तीनों में कोई अलग अलग रंग मिलाना, जैसे किसी में लाल स्याही, किसी में हल्दी पाउडर, ठीक है? देखना पानी का रंग कैसा हो जाएगा। जिस चीज का रंग हम मिलाएंगे वैसा ही हो जाएगा। अगर हम वो हल्दी वाला पानी और लाल स्याही वाला पानी को मिक्स कर देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा? एक और नया रंग बन जाएगा, है ना? पानी का कोई अपना रंग नहीं होता, यह रंगहीन होता है। रंगहीन मतलब कलरलेस, इसका कोई भी रंग नहीं होता, ठीक है? देखिए और बताइए, अब आपको देखना है और बताना है पानी का अपना रंग कैसा है। आपको बताना है पानी का अपना रंग कैसा होता है। अभी हमने पढ़ा कि पानी क्या होता है, रंगहीन होता है। पानी का अपना कोई रंग नहीं होता, ठीक है? आगे है आपके आसपास नदी, तालाब, हैंडपंप आदि का पानी देखिए और बताइए कि उसका रंग कैसा है और क्यों। आपके आसपास कोई नदी हो या कोई तालाब हो, हैंडपंप हो, उनका पानी आपको देखकर बताना है और बताना है कि उनका रंग कैसा है। तो ये आप घर से कर लाएंगे, ठीक है? क्या दिन और रात में भी इस रंग में कोई अंतर दिखता है? क्या जब सुबह होती है या अंधेरा होता है तो पानी के रंग में कोई अंतर दिखता है? दिन में भी पानी कलरहीन दिखता है और रात में भी पानी कैसा दिखता है? कलरहीन बोल रही हूँ, मतलब रंगहीन, ठीक है? आगे है पानी का स्वाद। निकिता ने कहा कि पानी खट्टा भी था और मीठा भी था। चलो देखें पानी का स्वाद कैसा है। निकिता ने क्या बोला, पानी का रंग कैसा था? खट्टा था, मीठा भी था। अब हम पता करते हैं कि पानी का स्वाद कैसा होता है। अब आपको घर पे जाके एक और एक्टिविटी करनी है। क्या करना है मैं बताती हूँ। पानी में नींबू का रस मिलाइए। एक ग्लास में पानी लेना, उसके अंदर नींबू का रस मिलाना और फिर उसको टेस्ट करना और फिर आपको बताना है कि उसका स्वाद कैसा लगा, ठीक है? एक और ग्लास लेना है, उसके अंदर पानी लेना है और फिर उसके अंदर नमक मिलाना है और फिर उसको पी के बताना है कि उसका टेस्ट कैसा लगा। ठीक है, पानी में शक्कर मिलानी है, फिर बताना है कि स्वाद कैसा लगा। ठीक है, फिर से मैं आपको एक बात बोलती हूँ कि पानी का कोई स्वाद नहीं होता, पानी का कोई रंग नहीं होता, उसमें जो मिलाओ उसका स्वाद भी वैसा ही हो जाता है। अगर पानी में हमने नींबू का रस मिलाया तो नींबू का रस कैसा होता है? खट्टा सा, तो पानी कैसा हो जाएगा? खट्टा हो जाएगा। पानी में नमक मिलाया तो पानी कैसा हो जाएगा? नमकीन हो जाएगा। शक्कर मिलाई तो कैसा हो जाएगा? मीठा हो जाएगा। तो पानी का कोई स्वाद नहीं होता, उसमें जो मिलाओ उसका स्वाद वैसा ही हो जाता है। ठीक है, बच्चे फिर निकिता से पूछने लगे कि पानी ने उससे और क्या क्या बातें की। निकिता को सपना आया था ना कि पानी ने उससे बहुत सारी बातें की, तो सारे बच्चे उससे पूछने लग गए कि और बताओ पानी ने आपसे और क्या क्या बातें की। निकिता बोली, पानी ने मुझसे कहा कि मैं जब चाहूं तब गायब हो जाता हूं और प्रकट भी हो जाता हूं। मैं बहुत ताकतवर हूं, कभी कभी मैं बहुत कठोर भी हो जाता हूँ। देखो पानी ने क्या क्या बोला, मेरा जब मन करता है मैं तब गायब हो जाता हूँ, मेरा जब मन करता है तब मैं आ जाता हूँ, मैं बहुत स्ट्रोंग हूँ, बहुत ताकतवर हूँ, कभी कभी मैं बहुत कठोर भी हो जाता हूँ। चलो पढ़ते हैं आगे कि यह कैसे हो सकता है। ठीक है, आगे है, गायब हुआ पानी, गर्मी का असर। अब आपको ये भी घर जाके कर कर देखना है। 2 ग्लास लेने हैं, उसके अंदर एक समान ऊंचाई तक पानी भरना है। ठीक है, चित्र नंबर 9.1 में देखें, अगले पेज पर छाया में रखा हुआ पानी भरा गिलास, और चित्र नंबर 9.2 में देखें धूप में रखा हुआ पानी भरा गिलास। आपको घर जाना है, घर जाके क्या करना है, 2 ग्लास में इक्वल पानी लेना है, बराबर पानी लेना है। एक ग्लास को धूप में और दूसरे ग्लास को छाया में रखना है। 2 दिन बाद दोनों गिलासों के पानी को देखना है। ठीक है, दोनों गिलासों के पानी में क्या अंतर आएगा? देखो, जो ग्लास हम धूप में रखेंगे वो पानी क्या हो जाएगा, भाप बनकर उड़ जाएगा। ठीक है, और जो पानी छाया में रखेंगे वो आज भी और आज से 2-3 दिन बाद भी वैसा ही रहेगा। ठीक है, आपको ये कर कर दिखाना है, मतलब कर कर देखना है घर पे जाके। ओके, सेकंड है फैलाव का असर, यह भी कीजिए। एक ग्लास, कटोरी और थाली लीजिए। आपको एक गिलास लेना है, कटोरी लेनी है और थाली लेना है। तीनों में एक समान मात्रा में पानी लेना है, जैसे 3-4 चम्मच पानी लेकर धूप में रख देना है। ठीक है, कुछ कुछ घंटों बाद देखिए कि किस बर्तन में कितना पानी है। 4-5 चम्मच पानी लेना है हमको किस किस चीज में, गिलास में, कटोरी में और थाली में। और फिर हमको क्या देखना है कुछ कुछ घंटों के बाद कि किस बर्तन में कितना पानी है। ठीक है, देखो चित्र नंबर 9.3 में देखें, अलग अलग बर्तन में पानी भरकर रखा हुआ है ना, किस किस में रखा हुआ है, गिलास में, कटोरी में और थाली में। किस बर्तन में पानी सबसे ज्यादा कम हो गया? अब आपको ये बताना है कि किस बर्तन में पानी सबसे ज्यादा कम हो गया। पानी जिस बर्तन में ज्यादा फैला हुआ होगा उस बर्तन में से जल्दी कम होगा। तो पानी किस बर्तन में ज्यादा फैला हुआ है, थाली में। तो सबसे पहले पानी कहाँ कम होगा, थाली में से। कम पानी जल्दी सूखेगा किसके कंपैरिजन में, जहां पर ज्यादा पानी है। ठीक है, किस बर्तन में पानी सबसे पहले कम हुआ, क्यों कम हुआ, और किस बर्तन का पानी सबसे कम सूखा, इस बर्तन में पानी सूखने में सबसे ज्यादा समय लगा क्यों, अब आपको ये बताना है। आप घर जाकर जब ये एक्टिविटी करोगे तब आप देखना और ऑब्जर्व करना कि पानी किस बर्तन में सबसे पहले कम हुआ है। आप समझ गए होंगे कि फैला हुआ पानी जल्दी सूखता है। आपने अपने घर में कपड़े को धोकर सुखाते हुए देखा होगा। देखो, जो पानी फैल जाता है, मतलब फैल के रखा हुआ होता है, तो वो पानी जल्दी सूखता है। जब हम कपड़े सुखाते हैं तो हमारे कपड़े अगर हम उनको धूप में डालते हैं तो क्या होते हैं, वो जल्दी सूख जाते हैं। चित्र में देखिए सूखते हुए कपड़े। आगे है, सोचिए और लिखिए। कपड़े कहाँ पर सुखाते हैं और क्यों? हम कपड़े कैसे सुखाते हैं? कपड़े जब धो लेते हैं निचोड़ कर, तो उसे क्या करते हैं, एक रस्सी पर धूप के अंदर उसको डाल देते हैं, तो क्या होता है, उनका पानी क्या हो जाता है, सूख जाता है धूप की वजह से और हमारे कपड़े सूख जाते हैं। कैसे सूखते हैं? जब कपड़े हम फैला कर डालते हैं, अगर ऐसे कपड़े निचोड़ कर पानी निकाल के ऐसे ही उसको बंद करके रख देंगे तो हमारे कपड़े नहीं सूखेंगे। ठीक है, आगे है, कपड़े पूरे फैलाकर सुखाने पर वो जल्दी क्यों सूखते हैं? जब हम कपड़े पूरे फैलाकर डालते हैं, जैसे चित्र में भी दिखाया गया है, कपड़े कैसे डाले गए हैं, फैला के डाले गए हैं, तो वो जल्दी क्यों सूखते हैं? क्योंकि हमने अभी अभी अभी, अभी पढ़ा कि फैला हुआ पानी जल्दी सूखता है, तो कपड़े अगर गीले हैं तो इसका मतलब उसके अंदर पानी है। अगर हम उन कपड़ों को फैला कर डाल देंगे तो वो पानी क्या होगा, जल्दी सूख जाएगा। प्रत्येक कोने में धूप पड़ेगी तो वो पानी क्या होगा, जल्दी सूख जाएगा। आगे है, सर्दी में कपड़े देर से क्यों सूखते हैं? जब सर्दी होती है तब हमारे कपड़े देर से क्यों सूखते हैं? एक तो हमारे पास धूप नहीं होती, ठीक है, और किसकी वजह से लेट सूखते हैं हमारे कपड़े? मौसम क्या होता है, ठंडा होता है, जिसकी वजह से हमारे कपड़ों में से जो पानी होता है वो निकल नहीं पाता। ठीक है, आगे है, जब कपड़े सूख जाते हैं तो पानी कहाँ जाता है? अगर हम हमारे कपड़े धूप में डालते हैं, जब धूप उन पे पड़ती है तो पानी क्या होता है, पानी क्या होता है, उड़ जाता है ना, हमारे कपड़े गीले नहीं रहते। जो तो धूप होती है वो क्या करती है, पानी को सोख लेती है। ठीक है, आगे है, सोख लेती है इन द सेंस कि जो पानी होता है वो भाप बनकर उड़ जाता है। अगर धूप आपके कपड़ों पे पड़ रही है तो वो पानी जो होगा वो भाप बनकर क्या होगा, उड़ जाएगा। आगे है, पानी गर्मी से भाप बनकर उड़ जाता है। जब धूप कपड़ों पे पड़ती है तो जो पानी होता है वो भाप बनकर उड़ जाता है। यह भाप हवा के साथ मिल जाती है, और जो ये भाप होती है वो हवा के साथ क्या होती है, मिल जाती है। पानी का वाष्प बनकर उड़ना वाष्पीकरण कहलाता है। पानी का भाप बनकर उड़ना, भाप को बोलते हैं वाष्प। पानी का भाप बनकर उड़ना क्या कहलाता है, वाष्पीकरण कहलाता है। वाष्पीकरण के कारण ही कपड़े सूखते हैं। इसके कारण क्या होते हैं, कपड़े सूख जाते हैं। हमारे चारों ओर बहुत सारा पानी वाष्प बनकर उड़ता है, मतलब भाप बनकर उड़ता है। गड्ढे, तालाब, नदी का पानी भी गर्मियों में वाष्पीकरण के कारण ही सूख जाता है। जो हमारे गड्ढे होते हैं, तालाब होते हैं और नदी का पानी होता है, वो गर्मियों में भाप बनकर ही उड़ जाता है और सूख जाता है। ठीक है, आगे है, प्रकट हुआ पानी। सपने में पानी ने निकिता को कहा था कि वह प्रकट भी हो सकता है। जो निकिता को सपना आया था उसमें पानी ने ऐसे भी बोला था कि वह प्रकट भी हो सकता है। चलो देखें यह कैसे होता है। अब आपको घर जाकर एक और एक्टिविटी करनी है, वो है, एक ग्लास में पानी लीजिए। तो आपको एक गिलास लेना है, उसके अंदर पानी लेना है, इसमें थोड़ा बर्फ डालिए या फिर इसे कुछ घंटों के लिए फ्रिज में रखिए और फिर निकालिए। ठीक है, आपको क्या करना है, एक गिलास में पानी लेना है, फिर इसमें थोड़ी सी बर्फ डालनी है। ठीक है, या उस पानी को क्या कर दें, कुछ घंटों के लिए फ्रिज में रख दें। जब हम फ्रिज में से निकालेंगे तो गिलास की जो बाहरी सतह होगी वो कैसी हो जाएगी, उसके ऊपर क्या हो जाएगा, पानी जो है, पानी की बूंदें आ जाएंगी हल्की हल्की, है ना। अगर गिलास में पानी भी लेंगे और उसके अंदर बर्फ डालेंगे तो जो बर्फ जब पिघलेगी तो उसका पानी जो होगा, बर्फ ठंडी होती है ना, तो वो चारों तरफ से गिलास के आसपास क्या हो जाएगा, पानी पानी हो जाएगा। ठीक है, ये आप करके देखना। सोचिए और बताइए, क्या अंदर का पानी गिलास के बाहर आ सकता है? जो अंदर का पानी होता है, क्या वो गिलास के बाहर आ सकता है? यह पानी कहाँ से आया होगा? मैंने आपको अभी बताया, अगर आप घर जाकर ये करोगे, गिलास के अंदर पानी लोगे और उसके अंदर बर्फ डालोगे, तो जो पानी होगा उसकी हल्की हल्की बूंदें जो होंगी वो बाहर आ जाएंगी गिलास के। यह पानी कहाँ से आया होगा? क्या तुम अपने आसपास और कहाँ कहाँ देखते हो? ऐसा तुमने कभी देखा है? अपने आसपास कहीं देखा है? देखा है तो हाँ या ना में जवाब लिखेंगे, ठीक है? आगे है, हमारे चारों ओर जो हवा है उसमें थोड़ी बहुत भाप सदैव होती है। जो हमारे आसपास हवा है उसमें थोड़ी बहुत भाप होती है, वो हमेशा रहती है। ठंडे गिलास के संपर्क में आने पर वह ठंडी होकर गिलास के बाहर जम जाती है। जब ठंडा गिलास उसके संपर्क में आता है तो वह ठंडी होकर गिलास के बाहर क्या होती है? जम जाती है। वाष्प का ऐसे पानी में बदलना संघनन कहलाता है। वाष्प का, भाप का ऐसे पानी में बदल जाना क्या कहलाता है? संघनन कहलाता है। गरम रोटियों के बंद डिब्बे में भी पानी आ जाता है। जब हम रोटी को पैक करते हैं, हमारा खाना पैक करते हैं या बंद कर कर डिब्बे में रखते हैं, तो रोटियों के अंदर भी पानी आ जाता है। तो रोटियों से निकली भाप ढक्कन के नीचे जम जाने से पानी आ जाता है। तो रोटियों से जो भाप निकलती है वो ढक्कन के नीचे जम जाती है, इसलिए क्या आता है? पानी आ जाता है। सोचिए और बताइए, तुमने ऐसे वाष्प को पानी में बदलते और कहाँ कहाँ देखा है? क्या आपने भी ऐसे भाप को पानी में बदलते हुए देखा है? देखा है आपने कभी ऐसा कि आपने टिफिन पैक करके रखा है तो आपकी रोटी जो होती है वो नीचे से हल्की हल्की गीली हो जाती है? क्यों होती है? क्योंकि जो उस रोटी की भाप होती है वो ढक्कन से, ढक्कन के नीचे जम जाती है, ठीक है? या और कहीं भी आपने कुछ भी देखा हो तो आप लिख देंगे, ओके? आगे है, पानी नहीं छलका, यह भी कीजिए। कांच का एक गिलास लीजिए, उसे पूरा पानी से भर दीजिए। घर जाकर आपको एक और एक्टिविटी करनी है। क्या करना है? कांच का एक गिलास लेना है, उसके अंदर पूरा पानी भर देना है, ठीक है? उसमें धीरे से एक सिक्का या कंकर डालना है। कोई एक सिक्का लेना है या कोई कंकर डालना है, ठीक है? पानी को ठहर जाने दीजिए, फिर एक और सिक्का या कंकर पानी में धीरे से डालिए। जब पानी थोड़ा ठहर जाए तब उसके अंदर एक और सिक्का या एक और कंकर पानी में धीरे से डालना है, ठीक है? फिर पानी ठहर जाने दीजिए। फिर पानी जब ठहर जाए, एक एक कर धीरे धीरे सिक्के या कंकर पानी में डालते जाइए, ठीक है? चित्र नंबर 9.5 में देखें, गिलास से ऊपर उठता पानी। देखो, जब हम कोई गिलास लेंगे उसके अंदर कोई सिक्का या कोई कंकर डालते रहेंगे तो सिक्का या कंकर पानी में अपनी जगह बनाएंगे, तो जो पानी होगा वो उसको क्या करेंगे? बाहर को धकेलेंगे। तो जो पानी होगा गिलास में वो बाहर आने लग जाएगा और गिलास के अंदर क्या रह जाएगा? कंकर या सिक्का। इन बिंदुओं के आधार पर देखिए और लिखिए। पानी से पूरा भरे होने के पश्चात भी गिलास में पहला सिक्का या कंकर डालने के बाद पानी छलका या नहीं? अब आप जब ये घर जाकर करेंगे तब आपको देखकर बताना है, जब गिलास पूरा पानी से भरा हुआ है तब जब हमने पहला सिक्का या कंकर डाला तो उसके अंदर से पानी बाहर गिरा या नहीं, ठीक है? गिलास के किनारे से देखने पर पानी ऊपर उठता हुआ दिखाई देता है या नहीं? जब हम गिलास को किनारे से देखेंगे तो पानी जो है आपको ऊपर उठता हुआ दिखता है या नहीं दिखता, या आप देख कर बताएंगे मेरे को, ठीक है? पानी कितना ऊपर उठ गया है? कितना ऊपर उठ गया है? जितना सिक्का और कंकड़ ने अपनी जगह बनाई पानी में उतना ऊपर क्या उठ गया है? पानी उठ गया है। पानी में कितने सिक्के या कंकड़ डालने के बाद पानी गिलास से बाहर छलक गया? या आप जब घर जाकर करेंगे तो आपको काउंट करके गिनकर डालना है सिक्का या कंकड़, कि कितने सिक्के या कंकड़ डालने के बाद जो पानी है वो गिलास के बाहर छलक गया। ठीक है, आगे है, सोचिए और बताइए। पानी किनारे से ऊपर क्यों उठता गया, बिखरा क्यों नहीं? जो पानी था वो किनारे से ऊपर क्यों उठ गया, बिखरा क्यों नहीं, एकदम से गिर क्यों नहीं गया? बताओ, अपनी तरफ से कुछ भी जो आपके मन में आ रहा है वो यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, क्या आपने किसी अन्य तरल पदार्थ को इस तरह किनारे से ऊपर उठते हुए देखा है? क्या आपने ऐसे कोई और सॉलिड मटेरियल को, लिक्विड मटेरियल को किनारे से ऊपर उठते हुए देखा है? तरल होता है लिक्विड पदार्थ। ठीक है, क्या आपने किसी और लिक्विड को, तरल पदार्थ को इस तरह किनारे से ऊपर उठते हुए देखा है? देखा है तो आप लिख दीजिए। आगे है, पानी छलका क्यों नहीं? इस बात को समझने के लिए एक रबड़ की तनी हुई झिल्ली की कल्पना कीजिए। पानी की ऊपरी सतह भी कुछ ऐसी ही होती है। धीरे धीरे ऊपर उठने के कारण सतह तनी रहती है और पानी छलकता नहीं है। जब पानी जो था वो बिखरा क्यों नहीं था, छलका क्यों नहीं था, इस बात को समझाने के लिए आप एक रबड़ से तनी हुई झिल्ली की कल्पना कीजिए, सोचिए। तो पानी की जो ऊपर की सतह होती है, लेयर होती है, वो भी कुछ ऐसी ही होती है। धीरे धीरे ऊपर उठने के कारण सतह क्या रहती है, तनी रहती है और पानी नीचे नहीं गिरता है। ठीक है, आगे है, पानी की ताकत। पानी ने निकिता को यह भी कहा था कि मैं बहुत ताकतवर हूँ, है ना? सपने में आया था तो पानी ने क्या बोला था कि मैं बहुत स्ट्रोंग हूँ, ताकतवर हूँ, चलो देखें कैसे, यह भी कीजिए। अब आपको यह भी करना है, क्या करना है? घर पर कुकर में खाना पकाते हुए सीटी को उठते हुए देखिए। घर पर जब आपकी मम्मी खाना बनाती हैं तो कुकर में बनाती है ना, तो घर पर कुकर में जब खाना पकता है तो उसकी सीटी को देखिए। कुकर में एक भगोने में पानी उबालने को रखिए, उस पर एक ढक्कन भी रखिए। पानी को खूब उबालिए, क्या क्या हुआ ध्यान से देखिए। ठीक है, एक तो आपको ये देखना है, जब आपकी मम्मी खाना बनाती है कुकर में तो जो सीटी होती है, खाना पकाते हुए कुकर की सीटी बजती है ना, तो उसको आपने ध्यान से देखना है कि सीटी जब बजती है तो सीटी ऊपर उठती है और उसके अंदर से क्या निकलती है, भाप निकलती है ना? ये आपको देख कर आना है कि निकलती है कि नहीं निकलती। चित्र में देख लीजिए, वैसे अगर नहीं देखा है तो चित्र नंबर 9.6 में देखे कुकर से कैसे भाप निकल रही है, निकल रही है ना? दूसरा आपको काम करना है, एक भगोना लेना है, कोई डोंगा लेना है, उसके अंदर क्या करना है, पानी को उबालने के लिए रख देना है और उस पर क्या रखना है, एक ढक्कन भी रख देना है। पानी को बहुत उबालना है, बहुत उबालना है और देखना है कि क्या हुआ, पानी कम हुआ, ज्यादा हुआ, उतना ही रहा, या क्या भाप बनकर उड़ा, नहीं उड़ा, ये आपको देखना है, करके बताना है मेरे को। ठीक है, आगे है, चर्चा कीजिए और बताइए। कुकर की सीटी और भगोने का ढक्कन थोड़ा ऊपर क्यों उठ गया? जब आप ये घर पर जाकर देखेंगे ना करके, कुकर की सीटी जैसे ऊपर उठी तो मैंने बोला भाप निकली, ऐसे ही जब भगोने में पानी उबालने के लिए रखेंगे तो उसका जो ढक्कन होगा वो भी थोड़ा क्या होगा, ऊपर को उठ जाएगा। क्यों उठेगा? क्योंकि वो उसके अंदर से क्या निकल रही है, भाप निकल रही है। ठीक है, पानी की भाप में शक्ति है, इसका क्या उपयोग किया जा सकता है? जो पानी की भाप होती है उसके अंदर बहुत शक्ति होती है, इसका और क्या क्या उपयोग किया जा सकता है? ठीक है, ऊपर से नीचे गिरते हुए पानी में भी ताकत होती है, उसके नीचे अगर कोई चक्री रख दे तो वह पानी के बल से घूमने लगेगी। अगर पानी ऊपर से नीचे गिर रहा है और उसके नीचे अगर हम कोई चक्री रख दें तो पानी के बल से क्या होगी, घूमने लग जाएगी। इसका मतलब पानी बहुत क्या होता है, ताकतवर होता है। यह भी कीजिए। अब आपको यह भी करना है, कागज, गत्ते, थर्माकोल, लकड़ी आदि से कोई गोल चक्री बनाइए। अब आपको इन सब चीजों का इस्तेमाल करना है, कोई एक चक्री बनानी है, गोल चक्री। अगर पानी ऊपर से कहीं से गिर रहा है तो पानी के नीचे रख दीजिए और देखिए कि क्या वो चक्री जो आप बनाओगे वो चलती है कि नहीं चलती। ठीक है, आगे है पानी का जमना। निकिता को पानी ने कहा था कि मैं बहुत कठोर भी हो सकता हूँ। पानी ने और क्या क्या कहा था निकिता को, कि वो बहुत कठोर भी हो सकता है। चलो देखें कैसे। पानी जब बहुत ठंडा हो जाता है तो जम कर कठोर हो जाता है। पानी को जब हम बहुत ठंडा कर देते हैं, जैसे पानी को हम फ्रीजर में रखते हैं, तो क्या हो जाता है, जम के बर्फ हो जाता है ना, तो वो क्या हो जाता है, जमकर कठोर हो जाता है, यानी वह बर्फ बन जाता है। क्या बन जाता है, बर्फ बन जाता है। एक बार बहुत तेज ठंड पड़ी तो एक पूरी झील जम गई और लोग उस पर पैदल घूमने लगे। इस बर्फ के नीचे झील का पानी था। पता है जब बहुत ठंड पड़ती है तो कई बार नदियों का, तालाबों का पानी सूख जाता है। तो उससे क्या हुआ था एक बारी, कि बहुत तेज ठंड पड़ी उससे पूरी झील जम गई और लोग उस पर पैदल चल रहे थे। इस बर्फ के नीचे क्या था, झील का पानी। ठीक है, ऐसे एक हमारे आसपास में भी कोई नदियां होती हैं तो उनका पानी जम जाता है ना, है ना, पर चलने मत लग जाना। ठीक है, आगे है यह भी कीजिए। बर्फ पानी में नहीं डूबती, यह सिद्ध करने के लिए एक प्रयोग सोचिए और कीजिए। देखो आज हमने पूरा क्या पढ़ा, पाठ पढ़ा पानी के बारे में, है ना। तो आपको ये बताना है जो बर्फ है वो पानी में डूबती नहीं है, आपको इसको प्रूफ करना है। डूबती नहीं ना बर्फ, क्या हो जाती है, उसके अंदर ही घुल जाती है। ठीक है, ये आपको सिद्ध करना है, कोई तरीका सोच के आइएगा घर से। ठीक है, आगे है सोचिए और लिखिए। क्या आपके यहाँ नदी तथा तालाब का पानी सर्दी में जम जाता है, क्यों? जब बहुत ठंड पड़ती है तो जो पानी होता है वो क्या हो जाता है, जमकर कठोर हो जाता है, इसलिए क्या होती है, जम जाता है वो पानी ज्यादातर सर्दी के कारण। ठीक है, आज हमने कितनी सारी चीजें सीखी ना, तो हमने क्या क्या सीखा, हमने सीखा पानी का उड़ना क्या है, वाष्पीकरण है। जब पानी भाप बनकर उड़ जाता है तो उसको क्या कहते हैं, वाष्पीकरण। वाष्पीकरण गर्मी में तथा चौड़ी सतह पर अधिक होता है। वाष्पीकरण ज्यादा कब होता है, या तो किसी की सतह क्या हो, चौड़ी हो, या गर्मी में ज्यादा होता है। पानी का वाष्प, पानी की वाष्प का पानी में बदलना संघनन कहलाता है। जो पानी की वाष्प होती है, भाप होती है, उसका पानी में बदल जाना क्या कहलाता है, संघनन कहलाता है। ठीक है, पानी अधिक सर्दी में जम जाता है। जो पानी होता है वो ज्यादा सर्दी में क्या होता है, जम जाता है। और बर्फ पानी पर तैरती है, कभी डूबती नहीं, क्योंकि जो बर्फ होती है उसका जो होता है वेट होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। बहते पानी में एवं जल वाष्प में शक्ति होती है। अगर पानी बह रहा है या जो पानी की भाप है उसमें बहुत शक्ति होती है जिसका हम उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, जाना, समझा, अब बताइए। पूरे पाठ में हमने बहुत सारी चीजें जानी, बहुत सारी चीजें समझी, अब आपको बताना है। पानी के कोई तीन गुण बताइए। अब आपको पानी के कोई तीन गुण बताने हैं, क्या, कि वो कठोर है, ताकतवर है। पानी की जो भाप होती है वो क्या होती है, वो भी बहुत ताकतवर होती है ना। पानी का उड़ना वाष्पीकरण है, ये भी आप लिख सकते हैं। आगे है सर्दी की सुबह में साइकिल, मोटरसाइकिल की सतह पर पानी की बारीक बूंदें क्यों दिखती हैं। जो सर्दी पड़ती है, तब हमारी सुबह में साइकिल, मोटरसाइकिल इन सब की सतहों पर पानी की बारीक बूंदें क्यों दिखती हैं? क्यों दिखती हैं हमें? क्योंकि वो ठंड के कारण क्या होती है, क्या हो रहा है यहाँ पे, संघनन हो जाता है। पानी की वाष्प किस में बदल जाती है? पानी में बदल जाती है। ठीक है, अगर कपड़ों को जल्दी सुखाना है तो क्या क्या करोगे? अगर आपके कपड़े गीले हैं और आपको उनको जल्दी सुखाना है तो क्या करेंगे? उन्हें फैला कर धूप में डाल देंगे, क्योंकि कपड़े या जो कपड़े होते हैं अगर उनको फैला कर डालेंगे तो वो क्या होंगे, जल्दी सूखेंगे। ठीक है, और पानी जो होता है वो क्या करता है, चौड़ी सतह पर वाष्पीकरण ज्यादा होता है ना? तो अगर हम पानी को कपड़ों को फैला कर डालेंगे तो वो जल्दी सूख जाएंगे। ठीक है, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिलाओ लगे उस जैसा। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा है, तेरे को जिसमें मिलाओ तो उस जैसा लगता है ना? अब मेरे पीछे पीछे बोलेंगे, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिलाओ लगे उस जैसा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 10, पानी और हम। आपको जो जो काम दिया गया है और जो जो एक्टिविटी दी गई है, आप कृपा करके उसे घर पर जाकर करके देखें। ठीक है, ओके।
सुनो किताब से सुनने के लिए आपका धन्यवाद।